मुख्य समाचारों में ट्रांसजेंडर विरोधी रैली में भाग लेने वाले एक राजनेता को विक्टोरियन लिबरल पार्टी से किया निष्कासित। पूर्व एनआरआई खिलाड़ी जेरेड हाइन को बलात्कार आरोप के लिए जेल की सजा और आईपीएल में बना एक और रिकॉर्ड। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। विक्टोरिया के विपक्ष के नेता जॉन पेसुतो ने लिबरल पार्टी से एक विवादास्पद सांसद को निष्कासित करने के लिए हुए वोट के परिणाम को एक मजबूत समर्थन के रूप में वर्णित किया है। मार्च में मोयरा डीमिंग द्वारा एक ट्रांसजेंडर विरोधी रैली में जाने के कारण पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। इसमें नियोनाजीज की उपस्थिति भी देखी गई। मोयरा डीमिंग्स को हटाने के लिए 19 सांसदों ने पक्ष में और 11 ने इसके विपक्ष में मतदान किया। मोयरा डीमिंग ने श्री पेसुतो पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी देकर प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की। जॉन पेसुतो का कहना है कि वो प्रस्ताव के समर्थन के स्तर को लेकर सहज हैं, क्योंकि 19 पक्ष में हैं और 11 विपक्ष में थे।
That's a strong endorsement of a process that was very difficult. It was very challenging. Remember, when any party has to deal with any kind of question of expulsion or suspension, it's not easy for members, and people can fall on either side of a line. But here, as a team, we understood how important it was to make a strong stand, and the party room did that.
और एक अलग प्रस्ताव में सांसदों द्वारा उच्च सदन के लिए सांसद रेनी हीथ को डिमोट किया गया। मार्च में आयोजित एक बैठक के पार्टी के रूम में उन्होंने मिनट्स लिए थे। श्री हीथ ने मिनट्स के 3 अलग अलग संस्करण तैयार किए, जिसमें से एक मीडिया में लीक हो गया। एनआरएल के पूर्व खिलाड़ी जेरेड हाइन कम से कम 2 साल जेल में बिताएंगे। 2018 में एनआरएल ग्रैंड फाइनल की रात न्यूकासल की महिला से बलात्कार के आरोप पर उनको ये सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने कुल 4 साल और 9 महीने की सजा सुनाई, जो पीछे से लागू है, और इसमें पिछले 9 महीनों को ध्यान में रखा गया है जिसे उन्होंने हिरासत में बिताया था। इसका अर्थ है कि 35 साल के जेरेड को 2 साल में रिहा किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले ही बाकी समय हिरासत में बिता चुके हैं। आरोपों पर तीसरी सुनवाई के बाद उन्हें दोषी पाया गया। जल्द से जल्द मई 2025 में उन्हें रिहा किया जा सकता है। तस्मानिया में होबार्ट में एक फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण पर नाराजगी है। इसके चलते 2 लिबरल बैक बेंचर्स ने त्याग पत्र दिया है, और इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र लिबरल राज्य में अल्पसंख्यक सरकार हो गई है। होबार्ट तट पर $715 मिलियन का स्टेडियम AFL द्वारा तस्मानिया को एक टीम लाइसेंस प्रदान करने के लिए सहमत होने से पहले की मांग थी, लेकिन इस परियोजना की आलोचना है और तस्मानिया की लिबरल पार्टी के भीतर भी आलोचना हो रही है। बैक बेंचर्स जॉन टकर और लारा अलेक्जेंडर ने पद छोड़ने का फैसला किया है, और वो निर्दलीय सांसद के रूप में अपने मतदाताओं की सेवा करेंगे। दोनों का ही कहना है कि वो स्टेडियम के दीर्घकालिक ऋण प्रभाव के बारे में चिंतित हैं।
We want to ensure for the Tasmanian taxpayers that this stadium doesn't become a nightmare for them going forward. We are interested to have a look at what the contracts say and what the business case say.
We all started united as a state in supporting a team, and then somewhere along the line it became a package with a stadium.
प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी ने इस साल के फेडरल बजट पर विपक्ष के पीटर डाटन की आलोचनाओं को खारिज कर दिया है। पीटर डाटन का कहना है कि लेबर का बजट जीवन यापन की बढ़ती लागत को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और मिडिल ऑस्ट्रेलिया अब एक वर्किंग पुअर है। एंथनी एल्बनीज़ी का कहना है कि पीटर डाटन वृद्ध देखभाल कर्मचारियों के लिए 15% वेतन वृद्धि जैसे कुछ महत्वपूर्ण उठाए गए उपायों से अनभिज्ञ हैं।
Peter Dutton has abandoned common sense. It seems that he's unaware that bringing wage increases forward are assisting middle Australia.
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एम पॉक्स का वैश्विक प्रकोप, जिसे शुरू में मंकी पॉक्स के रूप में जाना जाता था, वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है। चेचक से संबंधित यह बीमारी पिछले साल 100 से अधिक देशों में फैल गई और LGBTIQ+ लोगों सहित सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम देखे गए। पिछले 3 महीनों में लगभग 90% कम मामलों के साथ संक्रमण की संख्या में बड़ी गिरावट के बाद WHO ने आपातकालीन घोषणा को समाप्त कर दिया है। फेडरल सरकार ने फेयर वर्क कमीशन में यूनियन से जुड़े 8 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। कहा गया है कि ये औद्योगिक एम्पायर को पुनः संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। वर्कप्लेस रिलेशंस मंत्री टोनी बर्क का कहना है कि गठबंधन ने श्रमिकों को चुप कराने के प्रयास में आयोग में नियोक्ता पृष्ठभूमि से नियुक्तियों के साथ एक दशक बता दिया। उनका कहना है कि गठबंधन द्वारा की गई 27 स्थायी नियुक्तियों में से 26 नियोक्ता पृष्ठभूमि से थीं। श्री बर्क ने घोषणा की है कि टोनी स्लेविन को आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और काम अगले महीने शुरू होगा। और भारत के समाचारों में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो करीब 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में शामिल होंगे और गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे। वो कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे। इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय लगभग 1950 करोड़ रुपये है। और चक्रवात मोखा का तेजी से बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इस तूफान को लेकर बंगाल अलर्ट पर है। भारत के मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोखा कॉक्स बाजार और म्यांमार में बंदरगाह शहर सितवे के करीब क्योकप्पू के बीच रविवार को समुद्र तट से टकराएगा। इसके कारण 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों, जहाजों, नावों आदि को रविवार तक मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। और अपात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 67 सेंट और भारत के लगभग 55 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, आईपीएल इतिहास में यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचा है। ये हुआ है कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मुकाबले में। ईडन गार्डन में बृहस्पतिवार को राजस्थान रॉयल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करते हुए जायसवाल ने सिर्फ 13 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक यानी 50 रन जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आईपीएल के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से के.ए. राहुल और पैट कमिंस के नाम पर था, जिन्होंने 14 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बौछारें रहेंगी। अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल। अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल हैं और अधिकतम तापमान है 16 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में सुबह के समय फ्रॉस्ट रहेगी और आंशिक रूप से बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 1 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी बौछारें रहेंगी, अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।